नमस्कार। अगर हम कविताओं की बात करें तो जाहिर है कि अलंकारों की बात भी होगी, और हम जानते हैं कि महाभारत सबसे लंबी कविताओं में यानी महाकाव्यों में से एक है। अगर पूरी महाभारत ही कविता है तो जाहिर सी बात है कि भगवत गीता भी काव्य के रूप में लिखी गई, यानी इसमें भी अलंकार आते होंगे। अलंकारों में जो सबसे प्रसिद्ध है वो हिंदी व्याकरण में शायद यमक अलंकार होगा। इसके उदाहरण के रूप में कहा जाता है, कनक कनक ते चौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए नर वा खाए बौराए। अक्सर इसका मतलब बताते समय ये बताया जाता है कि कनक के दो मतलब हैं यहाँ पर। एक बार इसका मतलब भांग या धतूरा होता है, जिसे खाने के बाद आदमी की मानसिक दशा थोड़ी बिगड़ जाती है। दूसरी बार इसका मतलब सोना स्वर्ण होता है, यानी पैसा आने पर जैसे आदमी बावला हो जाए। तो अगर हम लोग इस यमक अलंकार को देखें तो फिल्मी गानों में भी इसका अक्सर इस्तेमाल होता रहा है, जैसे ये जान चली जाए जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए। यहाँ जिया शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा है और हर बार एक अलग अर्थ में इस्तेमाल होता है। ऐसा ही अगर हम लोग भगवद गीता के साथ देखें तो यहाँ पर 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में आपको अव्यक्त शब्द दो बार नजर आएगा। पहली बार यहाँ पर शब्द परमात्मा के रूप में इस्तेमाल होता है और दूसरी बार ये शब्द ब्रह्मा का वाचक है। अगर हम लोग अगले अलंकार की तरफ बढ़ें तो एक अलंकार होती है जिसे उपमा का नाम दिया जाता है। उपमा में आप किसी एक चीज़ की उपमा किसी दूसरी चीज़ से दे रहे होते हैं, जैसे ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, इसमें आप किसी के चेहरे की चांद से तुलना कर रहे होते हैं। उपमा अलंकार में एक उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाती है, वो तो यहाँ उपमेय 6 अध्याय के 19वें श्लोक में दिख जाता है। यहाँ मन को दीपक के लौ की उपमा दी गई है। ऐसे ही एक और हम लोग देखें तो एक संभावना अलंकार होता है। इस अलंकार में ये कहा जाता है कि ऐसा न करें तो ऐसा हो जाएगा। अगर हिंदी व्याकरण के हिसाब से देखें तो एक हेतु हेतु मद भूत होता है। ये भूतकाल का 6 भेद होता है, जिसमें भूतकाल में हुई किसी एक घटना का भूतकाल में ही हुई किसी दूसरी घटना पर प्रभाव दिखाया जाता है। इसे भी आपने फिल्मी गाने में बहुत बार सुना है, शायद आपको कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तुम होती तो कैसा होता, ये गाना याद होगा। तो इसमें पुराने टाइम पर कुछ हुआ होता और उसका बाद के टाइम पर क्या असर होता, ये बताया जा रहा है। ऐसा ही संभावना अलंकार में होता है। अगर आप 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में देखेंगे तो भगवान अर्जुन से कह रहे होते हैं, अगर तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। ये संभावना अलंकार है। एक और अगर हम लोग देखें तो ये विषाद अलंकार होता है। विषाद अलंकार होता है जब आप जैसा चाहते हैं वैसा ना होकर उसके खिलाफ कुछ हो जाए, उसके विरुद्ध कुछ हो जाए। जैसे कि क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, ये फिल्मी गाना है, हिंदी फिल्मों में शायद आपने सुना होगा। ये विषाद अलंकार होता है। अगर आप पहले अध्याय का 47वां यानी आखिरी श्लोक देखेंगे तो यहाँ अर्जुन धनुष बाण त्याग कर रथ में बैठ जाते हैं। वो आए तो युद्ध करने के लिए थे लेकिन अपने हथियार डालकर बैठ गए हैं। ये विषाद अलंकार है। ऐसे ही एक होता है कारणमाला अलंकार। कारणमाला अलंकार में एक कारण बताया जाता है, इसकी वजह से ये होगा, फिर उसकी वजह से कुछ दूसरा हो जाएगा, दूसरे की वजह से तीसरा हो जाएगा। इसे अंग्रेजी में बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। इसका वर्णन पहले अध्याय के 40वें से लेकर के 44वें श्लोक में आपको सबसे पहले नज़र आ जाएगा। फिर दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ कहा जा रहा होता है कि आप किसी विषय पर बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे तो फिर उसके प्रति आसक्ति होगी, आसक्ति पूरी ना होने पर फिर उसमें मोह या उसकी कामना के पूरे ना होने पर क्रोध के आने पर मूढ़ भाव आएगा, फिर आपका पतन हो जाएगा। तो एक के बाद एक कारण कैसे आते जाते हैं ये बताया जाता है। तो फिलहाल कारणों के बारे में बात करते हुए हम यहीं रुकते हैं। गीता में अलंकारों पे हम लोग बात कर रहे थे और हम लोगों ने कुछ एक अलंकार देखे। पहला हमने यमक देखा जो 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में आता है। उसके बाद हमने उपमा अलंकार देखा जो 6वें अध्याय के 19वें श्लोक में आता है। फिर हमने संभावना अलंकार देखा जो 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में आता है। इसके बाद हमने विषाद अलंकार देखा जो 1वें अध्याय के 47वें श्लोक में आता है। और फिर हमने कारणमाला अलंकार देखा जो 1वें अध्याय के 40वें से 44वें श्लोक में और 2वें अध्याय के 62वें से 63वें श्लोक में आता है। फिलहाल यहीं रुकते हैं, अगली बार हम लोग अलंकारों पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।